तेज धनराज, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन जब मेरे कॉलेज खत्म हुए तब मेरा सामना उससे हुआ। कॉलेज खत्म होने वाला था, मेरे सर पर शादी की तलवार लटक रही थी। बहुत टेंशन में थी मैं उस वक्त, और मुझे किसी अच्छी सी जॉब की सख्त ज़रूरत थी। पढ़ाई के बहाने मैंने शादी टाली हुई थी, और आई ने साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर जॉब नहीं मिली तो मेरी शादी करवा देगी। जब मैं उन्हें पैसे कमाकर नहीं दूंगी तो अपने सर से ये बोझ उतारने में वो वक्त नहीं लगाएंगे। मेरे जो प्रोफेसर थे वो मेरे बारे में सब जानते थे और बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कहा कि धनराज, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस में वैकेंसी निकली है, तो मैं वहां जाकर इंटरव्यू दूं। उन्होंने मुझे बताया कि मिस्टर धनराज बहुत अच्छे आदमी हैं और टैलेंट की कद्र करते हैं। अगर मुझे उस कंपनी में जॉब मिल गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे ऐसे ही मौके की तलाश थी, मैं उनकी बात मानकर चली गई। उस टाइम मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी थी और मैं उसके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करती थी। वहां मुझसे भी बेहतर और टैलेंटेड लोग आए थे जिन्हें एक्सपीरियंस भी था। मेरी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई और नर्वसनेस में इंटरव्यू के टाइम मुझसे बहुत सारी गड़बड़ हो गई। मैं समझ गई कि अपनी बेवकूफ़ी में मैंने इतनी अच्छी जॉब खो दी और मायूस होकर घर लौट गई। उन्होंने कहा था कि एक दो दिन में फ़ोन करके बता देंगे कि सिलेक्ट हुई या नहीं। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं दूसरी जगहों पर भी इंटरव्यू देने लगी। लेकिन दो दिन बाद फ़ोन आया और मेरी उम्मीद से उलट मुझे जॉब मिल गई थी। पहली तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मुझे सच में इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। लेकिन फिर जब अपॉइंटमेंट लेटर मेल पर आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया था। मुझे लगा जैसे मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो प्रॉब्लम अब मेरे सामने आने वाली थी उसके सामने बाकी प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं थी। इनाया रुकी, कायरव ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। इनाया ने गहरी सांस छोड़ते हुए आगे कहना शुरू किया, जिस दिन मैंने कंपनी ज्वाइन की तब मुझे पता चला कि मिस्टर धनराज ने अपनी बिगड़ती सेहत की वजह से रिटायरमेंट ले लिया है और अब कंपनी के सीईओ उनके बेटे हैं, मिस्टर तेज धनराज। मैं रेडी होकर कंपनी पहुंची और रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि मुझे कहाँ जाना है, तो उसने मुझे सीईओ के कैबिन में जाने कहा। मुझे अजीब लगा, फिर मैंने सोचा शायद मैंने न्यू ज्वाइन किया है इसीलिए शायद बॉस होने के नाते वो अपने एम्प्लॉई से मिलना चाहते होंगे। मैं सीईओ कैबिन का रास्ता पूछकर लिफ्ट की तरफ चली गई। ऊपर गई तो उस फ्लोर पर दूर दूर तक भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ी घबराहट भी होने लगी, पर मैंने खुद को हिम्मत दी, बप्पा को याद किया और सीईओ कैबिन के पास आ गई। डोर नॉक करते ही अंदर से कम इन की आवाज़ आई। मैंने डोर खोला और अंदर आई। सामने ही अपनी चेयर पर तेज धनराज बैठा था और उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। बताते हुए इनाया पास्ट की यादों में खो गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तेज ने गहरी निगाहों से उसे देखा। मिस इनाया देशमुख राइट? यस सर। इनाया सौम्यता से मुस्कुराई। सो तुम फ्रेशर हो? यस सर। कोई एक्सपीरियंस? कॉलेज में कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं और फाइनल ईयर में 3 मंथ इंटर्नशिप भी की है, सीवी में मेंशन है। इनाया का बिहेवियर प्रोफेशनल था। तेज ने उड़ती नज़र सामने रखी उसके सीवी पर डाली। यस देख रहा हूँ मैं, कम सिट। तेज ने अपने सामने लगी चेयर की तरफ इशारा किया। इनाया झिझकते हुए बैठ गई। उसके चेहरे पर अब नर्वसनेस दिखने लगी थी। घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। मुझे मेरे असिस्टेंट ने बताया कि इस बार एक फ्रेशर को हायर किया गया है, तो बस मैं थोड़ा क्यूरियस था ये देखने के लिए कि इस कैंडिडेट में ऐसा क्या स्पेशल है कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करके इसे सेलेक्ट किया। और तुमसे पर्सनली मिलने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि तुम वाकई में बहुत स्पेशल हो। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की ही ज़रूरत है। तुम ये चांस डिजर्व करती हो। थैंक यू सर। तेज की नज़रें उसके बदन पर फिसली और होठों पर भद्दी सी मुस्कान आ गई। इनाया को थोड़ा अजीब लगा और वो खुद में सिमट सी गई। तेज उसे ताड़ते हुए बेहयाई से मुस्कुराया। मेंशन नॉट। सो मिस इनाया आपको मेरा असिस्टेंट सब समझा देगा। आपको एक टीम असाइन की जाएगी और उनके साथ ही आपको काम करना होगा। यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे। होप सो कि हमारा साथ लंबा चलेगा। तेज उठकर खड़ा हुआ, इनाया की तरफ हाथ बढ़ाया। इनाया के लिए अब एक भी पल यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। जिस तरह तेज उसे घूर रहा था, उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, इनाया को सब अजीब लग रहा था। उसकी सिक्स्थ सेंस जैसे उसे वॉर्न कर रही थी कि उसके लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वेलकम टू माई वर्ल्ड, आई मीन टू से माई कंपनी। इनाया ने सकुचाते हुए हल्के से हैंडशेक किया, लेकिन तेज ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ लिया। उसके हथेली के पिछले हिस्से पर अपनी उंगलियां फिराते हुए अजीब तरह से मुस्कराया। इनाया डर से सहम गई। उसकी कस्ती पकड़ से दर्द की लहर पूरे बदन में दौड़ गई। सर यू आर हर्टिंग मी, इनाया ने अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा। तेज एकदम से इनोसेंट बन गया। ओ सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही तेज ने हाथ छोड़ा, इनाया बिना कुछ कहे कैबिन से बाहर भाग गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, डर से चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी थी और घबराहट के मारे दिल जोरों से धड़क रहा था। अंदर तेज की आंखों के आगे अब भी इनाया का खूबसूरत चेहरा और सांचे में ढला तराशा हुआ बदन घूम रहा था। उसकी आंखों में लस्ट सॉफ्ट दिख रहा था। उसने होंठ पर जीभ फिराई और अजीब तरह से मुस्कुराया। यू आर गोइंग टू बी माइन, अजीब सी जिद और जुनून था जो इनाया की जिंदगी को किस मोड़ पर लेकर जाने वाला था। इसका एहसास अभी खुद उसे भी नहीं था। प्रेजेंट मुझे उस चंद मिनटों की मुलाकात में ही समझ आ गया था कि उसकी नीयत सही नहीं है। शायद मुझे वहाँ जॉब भी मेरा टैलेंट नहीं खूबसूरती देख कर दी गई थी, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू था तब भी मुझे पूरे टाइम किसी की नज़रों के खुद पर होने का एहसास हो रहा था, लेकिन आसपास ऐसा कोई नज़र नहीं आया तो मैंने उसे अपना वहम समझ लिया। जैसा मेरा इंटरव्यू गया था मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे जॉब मिली और पहले ही दिन CEO की गंदी नज़र मुझ पर पड़ गई। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं उसी दिन वो जॉब छोड़ देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे उस वक्त उस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने सोचा वो तो वैसे भी कंपनी का बॉस है और मैं एक मामूली सी इवेंट मैनेजर, कहाँ ही मेरा उससे आमना सामना होगा। लेकिन मैं गलत थी। जब मैं कंपनी में रहती तो मुझे हमेशा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, लेकिन आसपास देखती तो कोई नज़र नहीं आता था। वो हमेशा मुझे अपने कैबिन में बुलाने के लिए बहाने बनाता था, लेकिन मैं वहाँ जाना अवॉइड कर देती। मेरी हेड थी जिनके अंडर मैं उस टाइम काम कर रही थी, वो हमेशा मुझे उसके पास जाने से बचा लेती थी, मुझे कोई ड्यूटी असाइन करके बिजी कर देती, मेरी जगह किसी और को भेज देती या खुद बात कर लेती। फिर वो लंच के लिए मुझे अपने पास बुलाने लगा, लेकिन मैंने मना कर दिया कि एम्प्लॉई का लंच के लिए अपने बॉस के कैबिन में जाना ठीक नहीं है, तो वो खुद कैंटीन में आने लगा। उसे बस बहाना चाहिए था मेरे आसपास रहने का और वो मौके ढूंढता था मेरे करीब आने का। ऑफिस में सब मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे। मैं बहुत कोशिश करती थी उससे दूर रहने की, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, जब मैं बाहर किसी इवेंट में जाती तब भी वो खुद चेक करने वहाँ पहुँच जाता था, और तब भी उसका ध्यान मेरे काम पर कम और मेरे बदन पर सादा रहता था। वो हमेशा किसी न किसी बहाने मुझे छूने की कोशिश करता था। मैं सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि वो जॉब नहीं छोड़ सकती थी।
एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इवेंट के बाद उसने सबको भेज दिया और मुझे रोक लिया। उस दिन मैं सच में बहुत डर गई थी कि पता नहीं अब वो क्या करेगा, लेकिन उसे एक कॉल आया और वो हड़बड़ी में वहाँ से निकल गया। बप्पा ने उस दिन मुझे बचा लिया था, मैं घर चली गई। तब मुझे पता चला कि वर्कप्लेस हरासमेंट कैसे होता है और जिनके साथ होता है उन्हें कैसा फील होता होगा। वो एक महीना मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा। मेरे लिए वो सब और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने मंथ एंड से पहले ही रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था, और हैरानी की बात थी कि वो अप्रूव भी हो गया। एक महीने बाद मैंने वहां जाना बंद कर दिया। इसके लिए आई बाबा से बहुत सुना, पर मेरे लिए मेरी इज्जत पैसों से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैं अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढने लगी। मुझे कहा गया था कि नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। 10 तारीख निकल गई, मैंने वेट किया। महीना खत्म होने को था लेकिन मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली। जब मैंने इसके लिए अपने सीनियर को कॉल किया तो मुझे पता चला कि उन्हें फायर कर दिया गया है। मैं समझ गई कि वजह मैं ही हूँ। उन्होंने मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करने कहा, और वहाँ बात करके मुझे पता चला कि मेरी पेमेंट बॉस ने रोकी हुई है, तो मुझे ऑफिस जाकर उनसे बात करनी होगी। मैं दोबारा वहाँ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी जॉब मिल नहीं रही थी और मेरे आई बाबा सैलरी के लिए प्रेशर बना रहे थे, तो मुझे ना चाहते हुए भी दोबारा वहाँ जाना पड़ा। टू बी कंटिन्यूड।